अरुणिमा ऑफिस के पीछे के रास्ते से निकल चुकी थी और अब वो सीधे एक टैक्सी लेती है और उसे लेकर अस्पताल की तरफ निकल जाती है। कुछ ही देर में टैक्सी हॉस्पिटल के सामने रुकती है और वो टैक्सी से उतरकर रिसेप्शन की तरफ जाने लगी। उसने विजिटिंग टाइम रिसेप्शन से पूछा, उसके बाद वो सीधे लिफ्ट की तरफ बढ़ गई। जैसे ही लिफ्ट दूसरी मंजिल पर पहुंचती है, अरुणिमा के दिमाग में अचानक से उसके माता पिता का ख्याल आता है। उसने तो कल इस बारे में अपने पेरेंट्स को बताया तक भी नहीं था कि आस्तिक ने उसे प्रपोज कर दिया है, लेकिन फिर उसने सोचा कि शायद उन्हें न्यूज़ में इस बारे में खबर मिल गई होगी। अरुणिमा ने अपनी अंगूठी को देखा और मुस्कुराने लगी। लिफ्ट तीसरी मंजिल पर पहुंच जाती है, लेकिन इससे पहले कि लिफ्ट का दरवाज़ा खुलता, अरुणिमा को लिफ्ट के बाहर से कुछ खटखटाने की आवाज़ सुनाई देने लगी। अरुणिमा ने लिफ्ट का दरवाज़ा खोला तो उसके कानों में एक औरत की तेज़ चिल्लाने की आवाज़ सुनाई दी। पहले तो अरुणिमा ने इस बात को इग्नोर किया क्योंकि ये हॉस्पिटल था और ऐसी आवाज़ें आना यहाँ पर नॉर्मल हो सकता था। वो जैसे ही लिफ्ट से बाहर निकली, उसकी नज़र गैलरी के दूसरी तरफ पड़ी और उसकी आँखें एकदम से बड़ी हो गईं, क्योंकि उसने सिक्योरिटी के कपड़े पहने हुए कुछ लोगों को देखा जिन्होंने इमरजेंसी रूम के बाहर घेरा बना रखा था और चिल्लाने की आवाज़ भी वहीं से आ रही थी। जैसे ही उनमें से एक गार्ड थोड़ा साइड हुआ तो अरुणिमा ने उस लड़की को देखा जो मदद के लिए चिल्ला रही थी। अरुणिमा की आंखें एकदम बड़ी हो गईं क्योंकि वो वही लड़की थी जो अरुणिमा जैसी दिख रही थी और अरुणिमा देख सकती थी कि उसका जख्म अभी तक नहीं भरा है, यहाँ तक कि उसकी चोट से खून निकलने लगा है। सामने खड़े काले कपड़ों में सिक्योरिटी गार्ड उसे बेदर्दी से खींच रहे थे और वो मदद के लिए चिल्ला रही थी। अरुणिमा एक पल के लिए डर गई। कौन है ये लोग और वो उसे लड़की को कहाँ लेकर जा रहे हैं? अरुणिमा तुरंत अस्पताल स्टाफ से मदद मांगने के बारे में सोच रही थी, लेकिन वहां पर उसे कोई नजर नहीं आ रहा था, इसलिए उसने खुद ही आगे जाकर उसकी मदद करने का फैसला किया। पर जैसे ही एक काले कपड़े पहने हुए आदमी ने उस लड़की को बेदर्दी से कमरे से बाहर खींचा, वैसे ही सारी टीम एक तरफ हो गई और अरुणिमा के कदम अपने आप ही रुक गए, क्योंकि उसे उन आदमियों के बीच खड़ा आस्तिक नजर आ रहा था। आस्तिक को वहां देखकर अरुणिमा के कदम ही नहीं हिल रहे थे। वो देख सकती थी कि आस्तिक के चेहरे पर कितनी कठोरता है और उसने बहुत आराम से अपने दोनों हाथ जेब में डाले हुए थे। दो आदमी उस लड़की को खींच कर लाए और सीधे फर्श पर फेंक दिया। ये नज़ारा देखकर अरुणिमा का दिल दहल उठा। उसे यकीन ही नहीं हो रहा था कि ये सब आस्तिक कर रहा है। आस्तिक चुपचाप इस नज़ारे को अपनी आंखों से देख रहा था। अरुणिमा को समझ ही नहीं आ रहा था कि आस्तिक ये सब क्यों कर रहा है। अरुणिमा अभी भी लिफ्ट के पास खड़ी थी और ये सब देख रही थी। शायद अभी तक किसी का ध्यान अरुणिमा की तरफ नहीं गया था। आस्तिक के दो सिक्योरिटी गार्ड ने उस लड़की को बाजू से पकड़कर खड़ा कर दिया। वो सीधे आस्तिक के बराबर खड़ी हो गई, लेकिन उसका चेहरा हताशा और निराशा से भरा हुआ था। उसका पूरा चेहरा दर्द में लिपटा हुआ था और ऐसा लग रहा था कि उसके आंसू अब उसके जख्मों को और ज्यादा कुरेद रहे थे। जाने क्यों अरुणिमा के दिल में एक दर्द का एहसास हुआ। उसे उस लड़की के लिए हमदर्दी महसूस हुई, जैसे वो किसी अपने को तकलीफ में देख रही हो। इससे आगे अरुणिमा और बर्दाश्त नहीं कर सकी। उसने गुस्से में चिल्लाते हुए कहा, छोड़ो उसे। सबका ध्यान उसकी दिशा में चला गया, यहाँ तक कि आस्तिक भी वहाँ देखने लगा और वो लड़की घायल हालत में अपनी आंखें खोलकर जबरदस्ती चेहरा उठाकर उसकी तरफ देखने लगी। अरुणिमा गुस्से में उन सबको देख रही थी। आस्तिक की आंखें चोटी हो गईं और उसने अरुणिमा को घूर कर देखते हुए कहा, अरुणिमा। अरुणिमा तेज कदमों से आस्तिक की तरफ आ रही थी और उसकी आंखों में गुस्सा था। जैसे ही वो उन लोगों के पास पहुंची जिन्होंने उस लड़की को पकड़ा हुआ था, उन्होंने उसे छोड़ दिया, जिससे वो सीधे फर्श पर गिरने को हुई। पर इससे पहले कि वो गिर पाती, अरुणिमा ने उसे संभाल लिया। अरुणिमा ने उसे पास के बेंच पर बिठाया और उसे संभालने लगी। आस्तिक ये देखकर गुस्से में बोला, अरुणिमा दूर हटो उससे, तुम्हें नहीं पता ये कौन है, ये तुम्हें नुकसान पहुंचा सकती है। आस्तिक का चेहरा सख्त हो गया था, लेकिन अरुणिमा अपने पर्स से रुमाल निकालकर उसके चेहरे को साफ करते हुए आस्तिक को देखकर बोली, तुम यहाँ क्या कर रहे हो आस्तिक, और ये सब क्या है? तुमने तो गलत काम छोड़ दिए थे ना मेरे लिए, तुम पूरी तरह से बदल गए थे, तो फिर ये क्या कर रहे हो तुम, और वो भी एक लड़की के साथ? उसके सवाल का जवाब देने के बजाय आस्तिक का चेहरा और सख्त हो गया। वो जल्दी से अरुणिमा के पास आया और उसका हाथ पकड़कर उसे खींचते हुए सख्ती से बोला, तुम क्या कर रही हो यहाँ पर, तुम्हें मना किया था ना यहाँ आने के लिए? अरुणिमा ने गुस्से में कहा, मैं बस इसकी मदद करना चाहती हूँ और इसके अलावा मेरा कोई इरादा नहीं था। पर तुम्हें नहीं पता, अभी अभी जब मैं रिसेप्शन पर इसके बारे में पूछ रही थी तो मुझे पता चला कि इस लड़की को कैंसर है और ये जल्दी मरने वाली है। तुम ऐसे में इस लड़की के साथ इतना बुरा व्यवहार कैसे कर सकते हो? आस्तिक ने अपनी आंखें बंद की और फ्रस्ट्रेट होकर बोला, अरुणिमा शांत हो जाओ, तुम्हें नहीं पता इस समय यहाँ क्या हो रहा है। लेकिन अरुणिमा ने भी गुस्से में उसे देखते हुए सख्ती से पूछा, तो मुझे बताओ ना यहाँ क्या हो रहा है, क्या छुपा रहे हो तुम मुझसे? जब तुमने मुझसे वादा किया है कि तुम अब कोई गलत काम नहीं करोगे और हम अपनी सीधी सादी जिंदगी जिएंगे, तो फिर तुम क्यों इसे इतना टॉर्चर कर रहे हो? फिर मैं ये समझूं कि तुमने अपना वादा तोड़ दिया है? कौन है ये लड़की जिसके होने की वजह से तुम्हें इतना फर्क पड़ रहा है? क्या रिश्ता है इसका तुमसे या फिर मुझसे? बताओ आस्तिक, मैं जानना चाहती हूँ कि कौन है ये लड़की, बताओ मुझे। अगर तुम मुझे नहीं बताओगे तो मैं अपने तरीके से पता करूंगी। फिर तो तुम मुझ पर जितनी भी पाबंदी लगा दो, मैं रुकूंगी नहीं। तो बेहतर यही है कि तुम मुझे बताओ। वो तुम्हें कुछ नहीं बताएगा, मैं बताती हूँ। आस्तिक ने गुस्से में उस लड़की की तरफ देखा जो अपनी बेबस निगाहों से उन दोनों को देख रही थी। अरुणिमा ने भी उसकी बात सुनी, लेकिन आस्तिक का चेहरा एकदम से कठोर हो गया। अरुणिमा ने उसे हैरानी से देखते हुए कहा, तुम मुझे बताओ कि। आस्तिक ने जब अरुणिमा को नरम पड़ते देखा तो उसने कसकर उसका हाथ खींच लिया और उसे लिफ्ट की तरफ ले जाते हुए कहा, तुम्हें किसी की बात सुनने की जरूरत नहीं है, चुपचाप चलो यहाँ से। तुम बस उसी पर यकीन करो जो मैं कह रहा हूँ, इसके अलावा और किसी पर नहीं। आस्तिक अरुणिमा को लिफ्ट के पास ले गया। वो लिफ्ट का बटन दबा रहा था लेकिन दरवाजा खुल ही नहीं रहा था। आस्तिक ने लिफ्ट के दरवाजे पर दो तीन बार लात मारी, तभी पीछे से उस लड़की ने तेज लेकिन बेबस आवाज में चिल्लाते हुए कहा, रुक जाओ अरुणिमा, मत जाओ, मैं तुम्हारी जुड़वा बहन हूँ आरुषि।